मेरे आत्मीय युवा मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं प्री एग्जामिनेशन के दो क्वेश्चंस पर आपसे बात करूंगा, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी बातों को देख लेते हैं। पहली बात कि अखबारों में आपने पढ़ा होगा, न्यूज़ में भी सुना होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अब कांवड़ यात्रा जो वहाँ होने वाली थी, जिसके लिए सरकार ने अनुमति दी थी, उसे अब रद्द कर दिया है, निरस्त कर दिया है। खासकर सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए राज्य सरकार से कहा भी था, उत्तर मांगा था, जवाब मांगा था, और खासकर सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि अब जबकि तीसरी लहर की इतनी आशंका व्यक्त की जा रही है और प्रधानमंत्री लगातार इसको लेकर के चिंतित हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में कांवड़ यात्रा की अनुमति देना कहाँ तक सही है, और उसमें बाकायदे कोर्ट भी उसने किया था कि जो जीवन की रक्षा का अधिकार है वो कहीं ना कहीं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से कई गुना ज़्यादा बड़ा है। तो बेहतर हुआ कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अब कांवड़ यात्रा स्थगित कर दिया। लेकिन एक अच्छी बात है जो मुझे लगता है कि सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट की नज़र में होनी चाहिए कि देखिए, जब कांवड़ यात्रा स्थगित करी गई तो किस तरीके से की गई। बकायदे उसके जो संगठन बने हुए थे, जो इस तरह की यात्राएं ऑर्गेनाइज करते हैं या जो धार्मिक संगठन रहे होंगे, उनके साथ बातचीत की गई, उनको समझाया गया, और इसके बाद उन्होंने यात्रा को स्थगित करने का निर्णय लिया। तो एक एक डेमोक्रेटिक तरीका है और इसी को हम डेमोक्रेसी कहते हैं, राइट। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ आर्टिकल्स प्रोवाइड कर रहा हूं, उसमें खासकर दो तीन आर्टिकल्स के बारे में मैं कुछ निर्देश देना चाहूंगा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को शेखर गुप्ता का एक लेख प्रोवाइड कर रहा हूं जो राजद्रोह पर है, और राजद्रोह पर ही एक दूसरा लेख हृदय नारायण दीक्षित जी का है। इन दोनों लेख को आप पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। मजेदार बात है कि ये दोनों लेख, आप यूं कह लीजिए, दो अलग अलग विचारों या निष्कर्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं। शेखर गुप्ता का मानना है कि इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए, और जो हृदय नारायण दीक्षित जी हैं उनका ये कह रहे हैं कि ठीक है, समाप्त किया जा सकता है, लेकिन इसकी कुछ आवश्यकता होती है, उस पर उन्होंने बात की है। देखिए, राजद्रोह पर जिस तरीके से बात हो रही है, तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगता है कि यह है, और खासकर अभी जो आने वाला मेन्स है उसकी दृष्टि से। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन दोनों लेख को मिला करके और एक छोटा सा नोट तैयार कर लें, और अगर आप इतना ही कर लेते हैं ना तो अपने आप में पर्याप्त होगा। देखिए, राजद्रोह पर बहुत सारे आर्टिकल्स इससे पहले भी आए हैं, आगे भी शायद आते रहेंगे, लेकिन आपको अपने को इस भीड़ से बचाना है, नहीं तो जंगल में आप खो जाएंगे। बस आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें मालूम होनी चाहिए, केवल इसी टॉपिक के बारे में नहीं बल्कि किसी भी टॉपिक के बारे में, उसी से आपका काम चल जाएगा। ज्यादातर स्टूडेंट सच पूछे तो फंसते ही इसी में है कि ये भी आ गया, वो भी आ गया, इसको भी बटोर लो, उसको भी बटोर लो, इसको भी पढ़ लो, ये भी नोट कर लो। आपकी दृष्टि स्पष्ट होनी चाहिए कि आपके रिक्वायरमेंट क्या है, बस दैट्स ऑल। आपको अपनी तैयारी वहीं तक सीमित रखनी चाहिए। इसी तरह से आपको बिजनेस स्टैंडर्ड का एक और लेख प्रोवाइड किया जा रहा है दोस्तों, फंसे हुए कर्ज के बारे में, है ना। बैंकों से लोग उधार ले लेते हैं और इसके बाद उसे वापस नहीं करते हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल किस्म का भी है, अब इसे आप कैसे इस्तेमाल में लाएंगे। तो देखिए, इसी में एक बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग किया गया है जो टाइटल में ही आपको पढ़ने को मिलेगा, दोस्ताना पूंजीवाद। ये दोस्ताना पूंजीवाद बहुत इंपॉर्टेंट शब्द युग्म है कह लीजिए, और साथ ही साथ हमारा जो पूरा का पूरा प्रशासन और राजनीतिक तंत्र है उसके स्वरूप को भी बताता है, दोस्ताना पूंजीवाद। तो इसमें आपको दोस्ताना पूंजीवाद को प्रूफ करने के लिए दो तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे, बस आप सिर्फ उन्हें नोट कर लीजिए। और आंकड़ों पर मत जाइए कि उसका इतना पैसा फंसा हुआ था तो अब वो इस पर होगा, उस पर होगा। आंकड़ों में फंसेंगे तो फिर आप उलझ जाएंगे और बेवजह, क्योंकि उसका आप उपयोग नहीं कर सकेंगे। डरिए मत कि अरे शायद उपयोग कर लें, शायद आ जाए, डर करके तैयारी मत कीजिए। साहस के साथ, आत्मविश्वास के साथ सिविल सर्विस की तैयारी कीजिए। उसमें से दो तीन अच्छे उदाहरण आप नोट कर लीजिए, दैट्स ऑल, ताकि एग्जामिनेशन में अगर पूछ लिया जाए तो आप उसे कोट कर सके, एग्जामिनर को आप इस ऐसा करके काफी प्रभावित कर लेंगे। दोस्तों, न्यूज में आपने सुना और आज से शुरू भी हो गया, मानसून सत्र शुरू हो गया है, और इस मानसून सत्र में भी देखिए, अगर आपने न्यूज को थोड़ा सा डिटेल में सुना हो, ध्यान से सुना हो, मैं कहना चाहूंगा, तो न्यूज में यह बात कही गई कि 33 दलों के 40 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मतलब इससे एक बात प्रूफ हो रही है कि हमारे जो लोकसभा और राज्यसभा है दोनों, है ना, इसमें लगभग लगभग जो राजनीतिक दल हैं वो उनकी संख्या 33 है। लगभग लगभग इसलिए कह सकते हैं कि उसमें शायद कुछ ऐसा मेंशन नहीं था कि सभी 33 राजनीतिक दलों के, तो चलिए 33 राजनीतिक दल हैं हमारे देश में मोटे तौर पर। लेकिन ये जो मैं राजनीतिक दल की बात कर रहा हूँ, ये संसद के लिए कर रहा हूँ, है ना। ये स्थानीय स्तर पर राज्यों में तो शायद संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, और उनके 40 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो यहां भी आपको एक डेमोक्रेसी दिखाई दे रही है कि संसद की कार्यवाही शुरू होने वाली है, यानी कि सत्र शुरू होने वाला है। तो सभी राजनीतिक दल आपस में मिलते हैं, किन किन इश्यूज पर बात करेंगे वो होता है, एक दूसरे के कहीं ना कहीं थॉट्स भी एक्सचेंज हो जाते हैं। और इसी में हमारे शायद स्पीकर ने ये बताया था कि पिछले सत्र में लगभग 122% काम हुआ, यानी कि हमारी जो संसद है वो 100% से भी अधिक काम कर रही है, एक अच्छी खबर है। इसी में एक और भी शब्द आया था, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, है ना। ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, यही निर्णय लेती है कि जो संसद में जो समय का आवंटन होगा क्वेश्चन पूछने के लिए, किस बिल को कितना कितना समय दिया जाएगा, एडवाइजरी कमेटी ही इस बात का निर्धारण करती है। और ध्यान रखिएगा कि इस एडवाइजरी कमेटी में ज्यादातर राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं, ऐसा नहीं कि इसमें केवल जो दल सत्ता में है उसी के ही मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो इस तरह की जानकारियां क्या हैं कि आपके अंदर एक अलग किस्म की पॉलिटी की समझ को विकसित करती हैं। और सच पूछिए तो आज के मुख्य विषय का मेरा आधार भी यही है। एक स्टूडेंट है हमारी शिवानी पवार, ऑनलाइन क्लास के भी स्टूडेंट हैं, इन्होंने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया। इन्होंने जो आपका पी एग्जाम हुआ है पिछली बार का 79वां और 80वां प्रश्न भेजा मुझे, और उसमें उन्होंने कुछ अपने डाउट्स रखे और उसे उन्होंने क्लियर करने की मांग की कि सर इसे आप क्लियर कर दीजिए। तो मुझे लगा कि नहीं, प्रश्न अच्छा है तो ये हर स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए कि जो प्री एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो विकल्प दिए जाते हैं, अगर आप उसमें कहीं उलझ रहे हैं तो फिर उसका समाधान क्या है, उसका भी कोई ना कोई समाधान तो होगा ही। तो इस लिहाज से दोस्तों आज के मुख्य विषय के तहत मैंने इसका चुनाव किया है। जो उन्होंने पहला क्वेश्चन रेज किया है, देखिए 79 है, अगर आपके पास डी सेट हो तो, अदरवाइज आप देख लीजिएगा। मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जबकि वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, ठीक है। दूसरा है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दांडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है और जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए स्थायी तौर पर निर्हर्त हो जाता है, भले ही वह कारावास से मुक्त हो चुका हो, और इसके बाद उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है ना। इसके बाद 4 विकल्प दिए हैं, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों सही हैं, 1 और 2 दोनों गलत हैं। तो इन्होंने जो पॉइंट रेज किया है, इसकी बारीकी को समझिए। इन्होंने कहा कि भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है, मतदान के लिए आप कब योग्य हो जाते हैं, 18 ईयर्स में, ठीक है, किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, राज्य की बात है, और एमएलए बनने के लिए जो मिनिमम एज बताई गई है वो 25 ईयर्स बताई गई है, और मतदान के योग्यता जो है 18 वर्ष की है। तो उनको ये लग रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि 18 साल की उम्र में आप किसी को एमएलए नहीं बना सकते, जब एमएलए नहीं बना सकते तो आप मंत्री भी नहीं बना सकते। तो उन्हें लग रहा है कि ये स्टेटमेंट गलत है। दोस्तों अगर बहुत स्ट्रेट तरीके से सोचें, लॉजिकल तरीके से सोचें, तो उन्होंने जो पॉइंट रेज किया है वो बिल्कुल सही है कि 18 साल की उम्र में उसे मंत्री नहीं बनाया जा सकता, ये एक तथ्य हुआ। लेकिन आप देखिए कि जब हम कहते हैं मतदान के लिए योग्य है, तो उसमें जो 18 वर्ष की आयु है वो केवल एक ही योग्यता है बस, लेकिन उसकी और भी योग्यताएं हैं मतदान देने के लिए, है ना, कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उस वो मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, इस तरह की और योग्यताएं दी हुई है ना। तो जब मतदान के लिए योग्य है कहा जा रहा है तो उसका संबंध मात्र एज से नहीं है, पहली बात है ना, पूरा का पूरा वो एक पैकेज है कि मतदाता में कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, वो पूरी बात को लेकर के चल रहा है, राइट। अब जो दूसरा स्टेटमेंट है, डेफिनेटली दूसरे स्टेटमेंट को तो आप समझ ही गए होंगे कि ये अपने आप में गलत है। अब हमारे सामने जो विकल्प दिए गए हैं, या तो हम कहें कि केवल 1 सही है, 2 गलत है, ये तो सही और विकल्प दिया हुआ है कि केवल 1 सही है या केवल 2 सही है, और इसके बाद एक और दो दोनों गलत हैं, और डी एक न तो एक और न तो दो। तो अगर हम मतदाता को 18 साल की योग्यता के आधार पर ही यहां डिफाइन करेंगे, यानी कि मतदाता की योग्यता सिर्फ 18 साल होना है, ये अगर हम मान लेते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा कि बिल्कुल उसे मंत्री नहीं बनाया जा सकता। तो इसका मतलब हो गया कि एक और दो दोनों गलत हैं, राइट। लेकिन अगर हम मतदान की जो योग्यता होती है उसको एक पैकेज के रूप में लेते हैं, तो डेफिनेटली फिर यह अपने आप में सही हो जाता है, क्योंकि और भी दूसरी योग्यताएं उसमें होनी चाहिए, तो यह कथन सही हो जाता है। तो दोस्तों, यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि जब हम बहुत ज्यादा बारीकी में घुसने की कोशिश करेंगे तो शायद गड़बड़ होने की संभावना ज्यादा रहेगी। इतनी बारीकी से कुछ प्रश्न ऐसे होते भी हैं जब यूपीएससी आपसे बहुत बारीकी की डिमांड करता है। लेकिन एक बात जरूर है कि इस तरह के प्रश्न अगर नहीं दिए जाएं तो वह बेहतर होगा, ये मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, क्योंकि स्टूडेंट के लिए डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जब मतदान की योग्यता हमारे दिमाग में आती है तो सबसे पहले एज आता है, उम्र आती है। अब मुझे नहीं मालूम कि यूपीएससी ने इसके लिए क्या कहा है, क्योंकि देखिए जब रिजल्ट आपके फाइनल हो जाएंगे तो यूपीएससी बकायदे अपनी वो सूची निकालती है कि ये क्वेश्चन सही है, इस रूप में सही है, उनके कौन कौन से विकल्प सही हैं। लेकिन मुझे वर्तमान में ऐसा लगता है कि अगर आपकी जगह मैं होता तो डेफिनेटली मैं पहले स्टेटमेंट को सही मानता, क्योंकि जो मतदान की योग्यता है वो 18 साल से शुरू होकर के फिर आगे लंबे समय तक चलती रहती है ना। हालांकि जब हम रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में जाते हैं तो वहां थोड़ी सी स्थिति हमें दूसरी दिखाई देती है ना, वहां और भी चीजें उसमें शामिल की गई हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन की गुंजाइश तो है, और उसी को शिवानी ने स्पष्ट किया है। जो दूसरा कथन है उसे सुनिए, इसमें तीन कथन दिए हुए हैं। भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है, बुला सकता है। भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के तीन सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी तीन सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। तीसरा है, एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है, जब संसद का चलना आवश्यक हो, है ना। ये बहुत ही व्यावहारिक किस्म का प्रश्न है। पार्लियामेंट के बारे में जो इसके सेशन होते हैं, इसके बारे में जो संविधान में लिखा गया है वो कुछ इस तरह का है कि उसके दो अधिवेशनों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। मतलब एक अधिवेशन शुरू हुआ फिर खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब जब खत्म हो गया तो 6 महीने के अंदर अंदर दूसरा अधिवेशन शुरू हो जाना चाहिए। तो अगर आप उसे कैलकुलेट करेंगे मैथमेटिकली तो पता लगेगा कि साल में 2 सत्र तो होने ही चाहिए, यह संवैधानिक रूप से अनिवार्य है। लेकिन 3 सत्र हो, 4 सत्र हो, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। तो यह अनिवार्य नहीं है, जरूरत के हिसाब से आप भले ही उसको कर लीजिए। तो भारत में जनरली 3 सत्र किए जाते हैं, एक देखते हैं कि आप बजट का होता है, फिर अब मानसून का है, इसके बाद विंटर सेशन हो जाता है। तो 3 सत्र हमारे यहां है। फिर है कि एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है। ये बिल्कुल कहीं भी ऐसा नहीं है कि ये जो सत्र होगा ये इतने ही दिन का होगा, या कुल मिलाकर के इतने दिनों तक संसद चलनी ही चाहिए। बल्कि कुछ दिनों पहले इसको लेकर के कुछ आर्टिकल्स भी आए थे, हालांकि एग्जामिनेशन से ये बहुत पहले पहले नहीं आए हैं, ये अभी कुछ दिनों की बात बता रहा हूं कि कितने हैं। जो ब्रिटेन की संसद है वो कितने दिन चलती है, हमारी संसद कितने दिन चलती है, इसके बारे में एक लेख था, मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया था। अब होता यह है कि जब ऐसी बातों को आप पढ़ लें तो कहीं दिमाग में अटक जाती हैं, तो इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने में वो हमारी मदद कर देती है। तो इसमें दोस्तों अब जो कन्फ्यूजन है जो स्टूडेंट को, वो है कि भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। तो बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि फिर जब हम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो हमें देखना होता है कि भाई संविधान में क्या लिखा है। तो संसद के सत्र को आहूत करेगा, ये हमारे राष्ट्रपति का अधिकार है। लेकिन ऐसा कहे कि नहीं, मीटिंग केवल यही हाल में ही होगी, जो हमारे संसद का हाल है, सेंट्रल हाल, ऐसा नहीं है। जरूरत पड़ने पर कहीं भी संसद की बैठक बुलाई जा सकती है। तो ये कॉमन सेंस लगाने की बात है। देखिए, क्योंकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन तो कोई पढ़ता नहीं है और उसकी जरूरत भी नहीं है, है ना। तो डेफिनेटली ये प्रश्न थोड़े से अब प्रत्यक्ष रूप से आपसे कुछ अलग तरह की अंडरस्टैंडिंग की डिमांड करते हैं। लेकिन जो तीसरा जो जो अभी मैंने दूसरा प्रश्न कहा, जिसके तीन स्टेटमेंट हैं, तो इसमें स्वाभाविक है कि पहला स्टेटमेंट गलत है कि जिसे वो ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है जिस जहां भी वो कहे। और तीसरा ये है कि दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है, है ना, और तीन सत्रों का तो प्रावधान किया ही नहीं गया है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो दोस्तों, शायद इसके माध्यम से प्रश्नों के उलझाव को आप कैसे थोड़ा सा सुलझा पाएंगे, इसकी कुछ आपको जानकारी मिल सकी होगी। तो दोस्तों, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देते हैं, ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं। इन्हीं में से एक मेल मिला है मुझे दीपेंद्र सिंह का, जो नागौर राजस्थान से हैं, जिन्होंने राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में बहुत अच्छी सफलता हासिल की है और इन्होंने इसका श्रेय काफ़ी कुछ डेली ऑडियो लेक्चर को दिया है। तो दीपेंद्र सिंह, इसके लिए आपको हम सब की ओर से बहुत बहुत बधाई और भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईमेल लिखने वाले दूसरे मित्र हैं डियर पंकज गोस्वामी, लीली साहू बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, शिवानी पवार, मुकेश यादव महाराजगंज उत्तर प्रदेश से और अभिषेक ठाकुर, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।